आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है नारी शक्ति वंदन पर विशेष कार्यक्रम।
नमस्कार। आवाज जो कभी धीमी थी आज बुलंद है, वो कदम जो कभी सीमाओं में बंधे थे आज आसमां छूने को तैयार हैं। नारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक है, और आज उसी शक्ति को एक नया आयाम देने के लिए देश की संसद में एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में 3 महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करने के लिए संसद के विशेष सत्र की आज से शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी और हम चर्चा करेंगे कि संसद के विशेष सत्र में आज क्या कुछ घटित हो रहा है और साथ ही साथ इन कानूनों से कैसे महिलाओं की स्थिति बदलेगी। उमेश जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद, नमस्कार।
इससे पहले कि उमेश जी के साथ हम चर्चा शुरू करें, सीधा चलते हैं संसद भवन जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपने विचार पेश कर रहे हैं।
विकास का आंकड़ा कहां से आया ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मैंने वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी, इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है, और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है, 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है।
आज सुबह से ही लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपना संबोधन दिया। अपने श्रोताओं को बता दें कि इसमें 3 विधेयक पेश हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, संविधान में 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026। उमेश जी, लंबा आपका राजनीतिक अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, कैसे देखते हैं इस बदलाव को, चूंकि बदलाव उसका हो रहा है जो बहुत उपेक्षित लंबे समय से भारत में रही हैं महिलाएं।
ये तो देखिए लगभग 3 दशक पुरानी मांग है, और इसको लेकर के संसद में कम से कम मुझे लगता है कि 3 बार तो विधेयक पेश हो ही चुका है। एक बार पारित हो चुका है 2023 में, जब जनता दल की सरकार थी तब विधेयक फाड़ा गया था। वाजपेयी सरकार में राम जेठमलानी के हाथों से छीन करके समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उस विधेयक को फाड़ दिया था, और फिर जब भी विधेयक फाड़ा गया तब उसको ठंडे बस्ते में डाला गया। लेकिन 2023 का साल ऐसा रहा जब महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ, लेकिन अगर आप याद करें तो उसको उस तरह से लागू करने के लिए खासतौर पर विपक्षी सांसदों की ओर से एक मांग थी कि जब तक डीलिमिटेशन न हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि 1976 के बाद से संसदीय सीटों का डीलिमिटेशन नहीं हुआ है, मतलब वो सीटें बढ़ी नहीं है, जनसंख्या के जो अनुपात में सीटें बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ाई गई हैं, और उसको बढ़ना था पहले 25-25 साल का वो मियाद होती है, 2000 में बढ़ना था, वाजपेयी सरकार ने उसको टाल करके फिर आगे बढ़ाया, इस तरह से बढ़ता रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इस बार जो कदम उठाया गया है एक तरह से क्रांतिकारी ही है कि पहले सीटें बढ़ा लें, डीलिमिटेशन कर दें, और उसके बाद जो महिलाओं को एक तरह से ताकतवर बनाने की राजनीतिक तौर पर, और एक चीज देख लीजिए कि पंचायतों में इसी संसद ने और राज्यों की विधानसभाओं ने उसका अनुमोदन किया है, 50% आरक्षण कई राज्यों में लागू हो चुका है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, कई राज्य हैं ऐसे। और आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी कि करीब 2700 ब्लॉक में जो महिलाएं हैं वो इस तरह से लीड कर रही हैं कि एक तरह से उन्होंने अपनी लीडरशिप को स्थापित किया है। तो मुझे लगता है कि उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश है, और इसका निश्चित तौर पर जो मैं आपके मन में सवाल उठ रहा है मैं समझ रहा हूं कि राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश होती है, होगी, जो लेगा वो फायदा उठाएगा। जी
जी हाँ, बिल्कुल, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि ये एक महत्वपूर्ण पल है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है।
उमेश जी, बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल उठ रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर ये कानून पारित होता है तो वहां से इसकी शुरुआत होगी, चाहे लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ाने की हम बात करें। परिसीमन को लेकर जो पेंच विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? चूंकि पहले था कि जो नई जनगणना है उसके अनुसार होगा, सरकार का कहना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार परिसीमन होगा।
देखिए, जब जनता दल की सरकार थी तो उस समय जब ये विधेयक पेश करने की कोशिश हुई थी तो उस समय के जनता दल के बड़े नेता जो बाद में एनडीए के पार्टनर भी बने, संयोजक भी रहे, शरद यादव ने महिलाओं को लेकर के बड़ी कठोर टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि ये फायदा जो है, अगर महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो ये फायदा सिर्फ जो पढ़े लिखे वर्ग की या सवर्ण क्लास की महिलाएं हैं उनको ही होगा। तो असली पेज जो है कि जो डिप्राइव सेक्शन जिसको मानते हैं, जो ओबीसी वर्ग है, एससी है, एसटी है, उन महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था में अलग से आरक्षण देने की एक मांग है। और क्या है कि आप एक चीज और देखिए कि हाल के कुछ वर्षों में जाति जनगणना की मांग बड़ी तेजी से उभरी है और जो कभी कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी होती थी, आप जानते हैं कि पहली जनगणना जब हो रही थी उसमें जाति का कालम रखा जाने की प्रस्ताव रखा था पहले जनगणना आयुक्त ने, तो उस जमाने के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने इसको मना कर दिया था, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन हाल के वर्षों में जो राहुल गांधी की कांग्रेस, आप देखेंगे कि जाति जनगणना को लेकर के बड़ी एक तरह से शिद्दत से मांग करती है। बिहार की नीतीश सरकार जो तब आरजेडी के साथ थी उसने उसको कराया भी था, कर्नाटक की सरकार करा चुकी है, लेकिन उसका पेच यह है कि उन्होंने कभी सामने उसके आंकड़े को पेश नहीं किया। तो मुझे लगता है ये सब बातें जो हैं, यही सब बातें हैं कि इस विधेयक में भी उठाई जा रही है और इसको लेकर के विपक्ष, खासतौर पर जो कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक है, वो इस विधेयक का विरोध कर रहा है।
जी हां, प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को समझाते हुए कहा कि इससे भारतीय लोकतंत्र की गरिमा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने।
हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकार रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा।
बहुत कम समय है उमेश जी, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य इस सरकार का है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसमें एक अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है।
निश्चित तौर पर जिस तरह से पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और उसका एक क्वालिटेटिव चेंज दिखता है, संसदीय प्रक्रिया में भी उसका असर तो जरूर दिखेगा, क्योंकि एक चीज हमारे यहां धारणा है, मानी जाती है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा संजीदा, कहीं ज्यादा संवेदनशील होती हैं। और जब ये सही बात है कि जब हर क्षेत्र में महिला आगे आ सकती है तो विधायिका में क्यों नहीं आ सकती? पंचायतों में हम दे सकते हैं, जिला परिषदों में दे सकते हैं, तो केंद्रीय स्तर पर विधानसभाओं में क्यों नहीं दे सकते? तो निश्चित तौर पर एक तो बदलाव आएगा। लेकिन एक आंकड़ा बता दूं कि वैश्विक स्तर पर जो पश्चिमी देश है जहां लोकतंत्र हमारे यहां से भी कहीं ज्यादा फला फूला माना जाता है, वहां महिला सदस्यों की संख्या 27% के आसपास ही है। जी,
भारत बदलाव की दहलीज पर है और संसद का यह विशेष सत्र निश्चित तौर पर एक नए भारत के निर्माण की कहानी लिखेगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन 7:10 पर हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे इस पर विशेष चर्चा करने के लिए। बने रहिए आकाशवाणी के साथ। उमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद,
नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे नारी शक्ति वंदन पर विशेष कार्यक्रम।